समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
ओम त्र्यंबकम् यजामहि सुगंधिम् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदना मृत्योर मोक्षीय यामामृतात्। आज सावन का पहला सोमवार है। भगवान शिव को समर्पित ये दिन हमें भक्ति निष्ठा और आस्था की भावना से ओतप्रोत कर देता है। ये महीना सिर्फ आराधना का ही नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और ध्यान का भी महीना है। ये आपको एक अवसर देता है आपके अंदर चल रही उथल पुथल को शांत करने का, अपने मन के अंदर झांकने का और भगवान शिव की आराधना के साथ अपने जीवन में परिवर्तन लाने का। इसी के साथ ही आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रम आज सवेरे के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज सवेरे की आज की संस्करण में आपका स्वागत है। अनीता आनंद के साथ मैं हूँ आकर्षता सिंह।
Sawan or Shravan is a holy month in the Hindu calendar. This month is dedicated to the worship of Lord Shiv and is considered very auspicious. Akashita, we all know that Mondays are always considered to be auspicious for the worship of Lord Shiv. Hence, Mondays during Shravan are considered to be very important. It is also known as Sawan Somvar. And Akashita, a little bit of a history for our listeners. Sawan traces back to the legend of Lord Shiv when he consumed poison through Samudra Manthan to get Amrit and thereby save the world. However, Goddess Parvati supported his neck and protected him from the poison. This month is also regarded as Lord Shiv's favorite since it is fully dedicated to him. So, hello Akashita, good morning and a very warm welcome to all our listeners tuned into Akashvani FM Gold on 100.1 megahertz and the Akashvani network. We bring you our daily news magazine, Aaj Savere, wherein we have the latest in national, international news, Metro City updates, as well as some historical information related to this day, that is the 14th of July. And quote of the day, the future belongs to those who believe in the beauty of their dreams, Eleanor Roosevelt. And now we begin with the headlines.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से उड़ीसा के दो दिन के दौरे पर होंगी। वे आज शाम भुवनेश्वर के बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचेंगी। यहां से वे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के पांचवें दीक्षांत समारोह में भाग लेने जाएंगी। राष्ट्रपति मुर्मू कल कटक में रेवेनशॉ विश्वविद्यालय के 13वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी और रेवेनशॉ बालिका उच्च विद्यालय के 3 भवनों के पुनर्निर्माण कार्य का शुभारंभ करेंगी। वे कटक में ही आदि कवि सरला दास के जयंती समारोह में भाग लेंगी और कलिंग रत्न पुरस्कार प्रदान करेंगी।
External Affairs Minister S. Jaishankar will be on a two-day visit to China beginning today. He will attend Shanghai Cooperation Organization SCO Foreign Ministers meeting in Tianjin City tomorrow. A report.
The foreign ministers will exchange views on SCO cooperation in various fields and major international and regional issues. The SCO grouping comprises 10 member states: India, China, Russia, Iran, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Pakistan, Tajikistan, Uzbekistan, and Belarus. China is the current chair of the SCO and is hosting the meetings of the grouping in that capacity. Dr. Jaishankar will also hold bilateral meetings on the sidelines of the SCO foreign ministers meeting. Dr. Jaishankar is expected to meet his Chinese counterpart Wang Yi during his visit to China. The two leaders are expected to take forward discussions to normalize bilateral relations and address the long-standing border dispute between India and China. The two countries are currently engaged in the delicate task of normalizing their ties after agreeing in October last year to end the face-off in Ladakh. It will be Dr. Jaishankar's first visit to China after the ties between the two countries came under strain following the 2020 military standoff along the line of actual control LAC in eastern Ladakh. Chirag Jha, Akashwani News, Delhi.
एक्ज्यूम 4 मिशन पर गए भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और 3 अन्य की वापसी आज शुरू होगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वापसी यात्रा भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे से शुरू होगी और मिशन के सदस्य कल लगभग 3 बजे धरती पर पहुंच जाएंगे। पहुंचने के बाद शुभांशु शुक्ला और तीन अन्य सदस्यों को फ्लाइट सर्जनों के निरीक्षण में 7 दिन के पुनर्वास में रखा जाएगा ताकि वे वापस धरती के गुरुत्वाकर्षण में समायोजित हो सकें। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 14 दिन के मिशन पर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र पहुंचने वाले वे पहले भारतीय और अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय हैं। इससे पहले विंग कमांडर राकेश शर्मा 1984 में अंतरिक्ष गए थे। शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष केंद्र में भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित 7 प्रयोग किए। धरती पर कल आने से पहले अंतरिक्ष में हुए विदाई समारोह में सुधांशु शुक्ला ने कहा कि उन्होंने कभी इस अविश्वसनीय यात्रा की कल्पना नहीं की थी। उन्होंने इस मिशन से जुड़े सभी लोगों का धन्यवाद दिया।
It has been an incredible journey. I did not imagine all this when I started on Falcon 9 on 25th. The team that is standing behind me, you guys have made it really special for us being here on the station. It was an incredible joy to be here and working alongside with a bunch of professionals like you. Over the past 2.5 weeks or so, we have done a lot of science on the station. We have done outreach activities and also looked back at the Earth, whatever time we found. I would like to thank my country and all their citizens for supporting this mission.
3 top leaders of banned insurgent group United Liberation Front of Ahom Independent Alpha One has been killed in Myanmar. The banned group, headed by Paresh Barua, claimed that its eastern headquarters in Myanmar was targeted by Indian Army with drones in the early hours yesterday. According to a statement by insurgent group, a total of 19 cadres have been killed and another 19 injured. However, Indian Army has categorically denied any such operation. Defense PRO Colonel M.S. Rawat said in Guwahati that there are no inputs with the Indian Army on such an operation.
इस वर्ष अमरनाथ यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या कल 2 लाख से अधिक हो गई। अधिकारियों ने बताया कि कल श्री अमरनाथ गुफा में 17,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने पावन हिम शिवलिंग के दर्शन किए। अब तक कुल 2,63,000 यात्री अमरनाथ गुफा के दर्शन कर चुके हैं। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को आरंभ हुई थी और ये श्रावण पूर्णिमा पर 9 अगस्त को समाप्त होगी।
US President Donald Trump is set to make a state visit to the UK, likely in September. The invitation was extended by King Charles III through a letter delivered by Prime Minister Keir Starmer during a February visit to the White House. Trump's first state visit in 2019 was hosted by Queen Elizabeth II. Buckingham Palace has yet to confirm the visit's exact dates. And now news from the world of sports.
At Wimbledon 2025, world number 1 Jannik Sinner defeated Carlos Alcaraz in 4 sets to become the first Italian to win the Wimbledon men's singles title. Sinner beat Alcaraz 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 to become the first Italian man to win Wimbledon in the competition's 148-year history. In cricket, in the third test match of the Anderson Tendulkar Trophy, India currently needs 135 runs to win at the Lord's Test. On the last ball of day 4, English skipper Ben Stokes dismissed night watchman Akash Deep for just 1 run. Earlier, hosts England were bowled out for 192 runs, setting up a target of 193 for the visitors. For India, Washington Sundar picked up 4 wickets, while Mohammad Siraj and Jasprit Bumrah each bagged 2 wickets. In basketball, the Indian women's team made a strong start to their FIBA Women's Asia Cup Division B campaign, defeating Kazakhstan 85-68 in a commanding performance in Bangkok, Thailand. The victory marks a positive beginning for the team as they aim to secure promotion to Division A. Meanwhile, in chess, Indian grandmasters Koneru Hampi and Devya Deshmukh advanced to the round of 16 at the Women's FIDE World Cup with impressive victories in the third round. In shooting, National Games champion Neeru Dhanda secured an impressive 4th place in the women's trap event during her debut final at the ISSF World Cup in Loneto, Italy. Jigyasa Pandey, Akashwani News, Delhi.
और आइए अब जानते हैं महानगरों की खबरें और अब चेन्नई की खबरों के साथ हैं अनीता।
तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन हैज अपील टू एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर टू टेक अप्रोप्रिएट डिप्लोमेटिक स्टेप्स टू सिक्योर रिलीज ऑफ द फिशरमैन एंड देयर फिशिंग वेसल्स अप्रिहेंडेड बाय द श्रीलंकन अथॉरिटीज। इन अ लेटर टू द मिनिस्टर ही सेड दैट 7 फिशरमैन अलॉन्ग विद देयर मेकनाइज्ड फिशिंग बोट वर टेकन इनटू कस्टडी। Another mechanized boat is reported to have been struck by a Sri Lankan naval vessel, causing significant damage to its stern. He added, these recurring incidents are deeply alarming. Indian researchers will soon have observatories in the sea to collect continuous oceanographic and meteorological data to improve weather forecast accuracy and support climate studies. Work is already underway with researchers from the city-based National Institute of Ocean Technology conducting offshore geotechnical investigations for a coastal observatory. A 15-meter tall platform was installed at a 10-meter water depth off their campus in Pamanji, Andhra Pradesh. The observatories will be installed under the Mission Mausam initiative to make India weather-ready and climate-smart. Chennai Metropolitan Development Authority is set to build a 40-crore craft bazaar, Kevannam Sathukkam, on nearly 2 acres of land behind the Koyambedu police station. Proposed during the state government's budget for last year, financial year, the Chennai Craft Bazaar will serve as a permanent year-round marketplace and exhibition space for artisans from across Tamil Nadu and other states. And now for Metro City updates from Delhi. Over to Akarshita.
जी, और अब खबरें दिल्ली से. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उज्ज्वल निकम, सीद सदानंदन मास्टर हर्षवर्धन श्रृंगला और डॉ मीनाक्षी जैन को राज्यसभा के लिए नामित किए जाने पर खुशी व्यक्त की है. एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि ये निर्णय समकालीन भारत की लोकतांत्रिक परंपरा में गौरव और विश्वास का अद्वितीय प्रतीक है. उन्होंने कहा कि इन सभी विशिष्ट व्यक्तियों ने अपने अपने क्षेत्र में जिस निष्ठा, विद्वता और व्यापक दृष्टि के साथ कार्य किया है. श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इन नामित सदस्यों की उपस्थिति से राज्यसभा की गरिमा और वैचारिक समृद्धि में अभूतपूर्व वृद्धि होगी. वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से विश्वविद्यालय के गार्गी कॉलेज में इतिहास पढ़ाने वाली प्रतिष्ठित इतिहासकार डॉ मीनाक्षी जैन को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाने पर बधाई दी है. इस बधाई संदेश में लिखा है कि दिल्ली विश्वविद्यालय को डॉ जैन पर गर्व है. दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने शाहदरा क्षेत्र में कांवड़ियों के लिए बनाए गए विशेष ट्रैक पर कांच के टुकड़े पाए जाने पर चिंता व्यक्त की है. उपराज्यपाल ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से बताया कि उन्होंने पुलिस और लोक निर्माण विभाग को मौके पर पहुंचकर तुरंत सड़क साफ करने के निर्देश दिए. दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में कल फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का 31वां संस्करण आयोजित किया गया. इस संस्करण को WWE वर्ल्ड हैबिटेट चैंपियन और द ग्रेट खली ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस मौके पर प्रतिभागियों ने रस्सी कूद, जुम्बा और हठ योग जैसी गतिविधियों में भी भाग लिया. इस अवसर पर श्री खली ने युवाओं को फिटनेस को प्राथमिकता देने और सक्रिय जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया. दिल्ली नगर निगम ने पर्यावरण संरक्षण और हरित राजधानी के उद्देश्य को लेकर ग्रीन एक्शन प्लान के तहत पौधारोपण अभियान की शुरुआत की है. इस अभियान का उद्देश्य वर्ष 2025 के अंत तक 7 लाख से अधिक पौधे लगाना है.
And now news from Bengaluru, Karnataka. Heavy and Medium Industries Minister MB Patel has informed that by July 15, Chief Minister Siddaramaiah will take a final decision on allotting land for the high-tech defence and aerospace park in Devanahalli Taluk near Bengaluru. Addressing media persons in Bengaluru yesterday, he said a few farmers are staging protest against land acquisition and there are also some farmers ready for acquisition of 3.5 crore rupees per acre. The minister said that the government is weighing the pros and cons to acquire the land for the proposed park.
Aur ab Mumbai se khabrein. आषाढ़ी एकादशी तीर्थ यात्रा के अवसर पर महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम ने 5,200 अतिरिक्त बसों की तैनाती के माध्यम से लगभग 10 लाख श्रद्धालुओं और यात्रियों को विट्ठल दर्शन के लिए पंढरपुर तक सफलतापूर्वक पहुंचाया है. इससे निगम को 35.87 करोड़ रुपए का उल्लेखनीय राजस्व प्राप्त हुआ. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाई के अनुसार पूरे महाराष्ट्र से श्रद्धालु भगवान विट्ठल का आशीर्वाद लेने पंढरपुर आते हैं और उनकी सुगम व सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए MSRTC ने 3 जुलाई से 10 जुलाई के बीच ये अतिरिक्त बसें चलाई हैं. वहीं महाराष्ट्र ने वन्य जीव ट्रैकिंग और निगरानी प्रणाली के लिए AI संचालित मार्वल प्रणाली तैनात की है. महाराष्ट्र में मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सरकार द्वारा संचालित पहल मार्वल महाराष्ट्र अनुसंधान और संवर्धित कानून प्रवर्तन हेतु सतर्कता ने राज्य वन विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना के तहत विकसित की जाने वाली तकनीक को ताड़ोबा, नवेगांव, नागजीरा और पीच जैसे बाघ अभयारण्यों के निकटवर्ती वन किनारे वाले क्षेत्रों के साथ साथ रामटेक, देवलापार, पाराशिवनी और पौनी जैसे प्रस्तावित क्षेत्रों में भी अपनाया जा रहा है।
द हैदराबाद नेहरू जूलॉजिकल पार्क NZP हैज एक्सपेंडेड इट्स कलेक्शन ऑफ एक्सोटिक एनिमल्स विद द रिलीज ऑफ अ पेयर ऑफ सर्वल कैट्स इनटू द इंक्लोजर फॉर पब्लिक डिस्प्ले यस्टरडे। दिस न्यू एक्सोटिक स्पीसीज इज एंडेमिक टू द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट एंड कैन लिव अप टू 16 इयर्स इन कैप्टिविटी।
और अब कोलकाता से खबरें। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और सांसद श्री अधीर रंजन चौधरी ने उड़ीसा, महाराष्ट्र आदि कई राज्यों में प्रवासी बंगाली श्रमिकों के उत्पीड़न के संबंध में भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। उन्होंने इस मामले में राष्ट्रपति से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। और अब आज सवेरे में समय है महानगरों के मौसम का हाल जानने का। दिल्ली में आज सुबह बादल छाए रहने के साथ मध्यम वर्षा होगी। आज का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई में भी बादल छाए रहने के साथ बारिश का अनुमान है। बात करें तापमान की तो आज का न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। कोलकाता में भी बादल छाए रहेंगे, बारिश और गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। आज का न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।
चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ पार्टली क्लाउडी स्काई विद पॉसिबिलिटी ऑफ मॉडरेट रेन और थंडरस्टॉर्म। The minimum temperature was 27 degrees Celsius and the maximum will be around 38 degrees. Bengaluru is expected to have a generally cloudy sky with moderate rain. The minimum temperature was 20 degrees Celsius and the maximum will be around 30 degrees. Hyderabad is expected to have a partly cloudy sky with possibility of rain or thunderstorm or dust storm. The temperature will hover between a minimum of 26 degrees and a maximum of 33 degrees Celsius.
और आइए अब चलते हैं इतिहास के पन्नों में और जानते हैं कि क्या कुछ खास हुआ है आज के दिन।
इन द ईयर 1942 ब्रिटिशर्स क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज पास्ड बाय कांग्रेस वर्किंग कमेटी। दे डिमांडेड डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश एंड अग्रीड ऑन पैसिव रेजिस्टेंस अंटिल इंडियाज इंडिपेंडेंस। इट वाज डिक्लेयर्ड ऑन 8th ऑफ अगस्त 1942 एट अगस्त क्रांति मैदान ग्वालियर टैंक। In 1946, India grants Siam a 20-year, 3 million credit to increase the export of Siamese rice. In 1997, India finishes third in Asian women's weightlifting. In 1998, India is elected chairperson of the World Intellectual Property Organization Standing Panel on Information Technology in relation to intellectual property rights.
और आज के दिन ही 2008 में नेपाल की कार्यकारी संसद ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन वाले संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दी। और 2008 में ही आज के दिन वेनेजुएला की डायना मेंडोजा ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता और विश्व की सबसे बुजुर्ग इंटरनेट ब्लॉगर के रूप में चर्चित ऑस्ट्रेलियाई महिला का निधन हुआ। और आइए बात करते हैं उन महान हस्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
And in this segment, we remember Swami Sivananda Saraswati on his death anniversary today. He passed away in 1963. A yoga guru, a Hindu spiritual teacher and a proponent of Vedanta, Sivananda was born in Pattamadai in Tirunelveli district of modern Tamil Nadu and was named the Kuppu Swami. He studied medicine and served in British Himalaya as a physician for several years before taking up monasticism. He was the founder of Divine Life Society, that is DLS, in 1936, Yoga Vedanta Forest Academy, and the author of over 200 books on yoga, Vedanta and variety of subjects. He established Sivananda Ashram, the headquarters of DLS, on the banks of Ganga at Munikireti and 3 kilometers from Rishikesh, and lived most of his life there. Sivananda Yoga, the yoga form propagated by his disciple Vishnu Devananda, is now spread in many parts of the world through Sivananda Yoga Vedanta centers.
आज हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध संगीतकार मदन मोहन की पुण्यतिथि है। अपनी गजलों के लिए प्रसिद्ध इस संगीतकार का पूरा नाम मदन मोहन कोहली था। अपनी युवावस्था में वे एक सैनिक थे, बाद में संगीत के प्रति अपने झुकाव के कारण ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ गए। आकाशवाणी में उनकी मुलाकात संगीत जगत से जुड़े उस्ताद फैयाज खां, उस्ताद अली अकबर खां, बेगम अख्तर और तलत महमूद जैसी जानी मानी हस्तियों से हुई। बतौर संगीतकार वर्ष 1950 में प्रदर्शित फिल्म आंखें के जरिए मदन मोहन फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने में सफल हुए। मदन मोहन ने अपने ढाई दशक लंबे सिने करियर में लगभग 100 फिल्मों के लिए संगीत दिया। मदन मोहन के संगीत निर्देशन में राजा मेहदी अली खां रचित गीतों में आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे लग जा गले जैसे गीत श्रोताओं के बीच आज भी लोकप्रिय हैं। उन्हें फिल्म दस्तक के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा गया। आइए सुनते हैं उनका ये गीत।
कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया।
वर्ष 1965 में प्रदर्शित फिल्म हकीकत में मोहम्मद रफी की आवाज में मदन मोहन के संगीत से सजा ये गीत कर चले हम फिदा जानू तन साथियों आज भी श्रोताओं में देशभक्त के जज्बे को बुलंद कर देता है। आंखों को नम कर देने वाला ऐसा संगीत मदन मोहन ही दे सकते थे।
He is considered one of the most melodious and skilled music directors of Hindi film industry, particularly remembered for immortal ghazals he composed for Hindi films. Most of his best works are with singers Lata Mangeshkar, Mohammad Rafi and Talat Mahmood. He scored his first big break with the film Aankhe, released in 1950, which marked the beginning of a long-lasting collaboration with Mohammad Rafi. His next film was Ada, which saw the beginning of a long-lasting collaboration with Lata Mangeshkar. His other compositions like Wo Chup Rahe To from film Jahan Ara, Maine Rangli Aaj Chunariya Dulhan Ek Raat Ki, are similar examples. Madan was also able to write songs for male singers such as Talat Mahmood, Phir Wahi Sham, Wahi Gum, Main Teri Nazar Ka Surur Hoon, Teri Aankhon Ke Aansu from Jahan Ara, and Meri Yaad Mein Tum Na Madhosh. And this is a song Ek Haseen Sham Ko from Dulhan Ek Raat Ki, sung by Mohammad Rafi.
दिल मेरा खो गया
एंड टुडे इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अर्नस्ट इंगमार बर्गमन। the Swedish film and theater director and screenwriter, widely considered as one of the greatest and most influential film directors of all time. His films have been described as profoundly personal meditations into the myriad struggles facing the psyche and the soul. Amongst his most acclaimed works are The Seventh Seal, Wild Strawberries, Persona, Fanny and Alexander. I'm playing a snippet from Fanny and Alexander.
Not for me to swallow my sing. For my for besöket.
Ja, där ser du. Nu gråter jag. Glada, fina livet är slut.
Bergman directed more than 60 films and documentaries, most of which he wrote for both cinema releases and television screenings.
आज हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री लीला चिटनिस की पुण्यतिथि है। लीला चिटनिस ने 52 वर्ष तक अभिनय किया और अशोक कुमार की नायिका रही, तो बाद में अनेक फिल्मों में वे दिलीप कुमार, राज कपूर और देव आनंद की माँ की भूमिकाओं में नजर आई। लीला चिटनिस ने अभिनय करने के अलावा एक फिल्म आज की बात का निर्माण और निर्देशन भी किया। उनकी प्रमुख फिल्में रहीं आवारा, बंधन, कंगन, काला बाजार, इंसाफ आदि। आइए सुनते हैं उनका ये गीत। आज प्रसिद्ध राष्ट्रभक्त स्वतंत्रता सेनानी और पत्रकार देशबंधु गुप्त की जयंती है। अपने विद्यार्थी जीवन में ही देशबंधु गुप्त राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े थे। उनसे प्रभावित होकर ही लाला लाजपत राय ने उन्हें अपने साथ ले लिया था। गुप्त जी में संगठन करने की बड़ी क्षमता थी। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्हें गिरफ्तार किया गया और फिर 1945 में ही ये जेल से बाहर आ सके। एक पत्रकार के रूप में भी देशबंधु गुप्त जाने जाते थे। स्वामी श्रद्धानंद ने इन्हें राष्ट्रीय पत्र 30 का संपादक नियुक्त किया था। 1948 में अखिल भारतीय समाचार पत्र संपादक सम्मेलन के अध्यक्ष भी ये चुने गए और गुप्त जी हमेशा से जाति प्रथा का विरोध किया।
Today is also the birth anniversary of Woodrow Wilson Guthrie, or Woody Guthrie, was the American singer, songwriter and composer, widely considered to be one of the most significant figures in American folk music. His work focused on themes of American socialism, anti-fascism and inspired many generations, both politically and musically, with songs such as This Land Is Your Land and Tear Down the Fascists. I'm playing a song by him, So Long, It's Been Good to Know You. Bye.
I've got to be rolling along. I'll sing this song, but I'll sing it again, of the place that I lived on the West Texas.
Guthrie wrote hundreds of country folk and children's songs along with ballads and improvised works, Dust Bowl Ballads. Guthrie's album of songs about Dust Bowl period were included in Mojo's magazine list of 100 records that changed the world, and many of his recorded songs are archived in the Library of Congress.
आज भारत के प्रसिद्ध समाज सेवकों में से एक गोपाल गणेश आगर की जयंती है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने प्रसिद्धि पाई थी। वे प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के सहपाठी भी थे और उन्होंने सुधारक नामक एक साप्ताहिक पत्र भी निकाला था और छुआछूत और जाति प्रथा का खुलकर विरोध किया। वे विधवा विवाह के पक्षपाती भी थे। और आइए श्रोताओं, समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, लेकिन उससे पहले हम आपको लता मंगेशकर का ये बहुत ही फेमस गाना फिर से सुनाते हैं जो हमने सुनाया अभी। हमने बात की थी मदन मोहन की, आइए सुनते हैं ये गीत। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए आकर्षिता और अनीता को कार्यक्रम आज सवेरे यहीं पर समाप्त करने की।
स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप नेक्स्ट इज समाचार प्रभात अवर हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन, हैव अ ग्रेट डे।
नमस्कार।